नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं प्रशांत कुमार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा संपन्न कर स्वदेश रवाना। सीरिया में 2 बसों की टक्कर में 35 लोगों की मौत। ईरान ने लगातार 13 रात अमरीकी हमलों के बाद सैन्य कार्रवाई में विराम की घोषणा की। दक्षिणी चीन में तूफान नोल का अलर्ट जारी। हांगकांग ने दर्जनों उड़ानें रद्द की। उत्तर प्रदेश में सारनाथ स्थित प्राचीन बौद्ध स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में खेले गए दूसरे 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रनों से हराया। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत ने 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी करने के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। यात्रा के अंतिम चरण में उन्होंने रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशूर दान के साथ व्यापार, निवेश, रक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से व्यापक चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रोमानिया के प्रधानमंत्री और संसदीय नेताओं से भी मुलाकात की। उन्होंने भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि भारतीय कंपनी रोमानिया के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।
डिफेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, रिसर्च, हेल्थ केयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, AI, इनोवेशन तथा एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग जैसे एक नया नया क्षेत्र में आर्थिक सहयोग के व्यापक अवसर उपलब्ध है। मुझे ये देखकर प्रसन्नता है कि भारतीय कंपनीज और भारतीय प्रोफेशनल्स रोमानिया के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।
बुखारेस्ट में उन्होंने भारतीय समुदाय के साथ बातचीत की। राष्ट्रपति ने भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना करते हुए उन्हें दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया है।
भारतीय प्रवासी समुदाय एकजुट होकर रोमानिया में भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए। भारतीय IT इंजीनियरिंग स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तथा विद्यार्थियों की नई पीढ़ी अब रोमानिया को अपना घर बना रहे हैं। रोमानिया की अर्थव्यवस्था और समाज में अपना योगदान तथा यहाँ भारतीय संस्कृति और मूल्यों के प्रसार के लिए आपके प्रयास आपको भारत का सच्चा प्रतिनिधि बनाते हैं।
सीरिया में आज राजधानी दमिश्क को पूर्वी प्रांत दीर अल-ज़ोर से जोड़ने वाले राजमार्ग पर 2 बसों की टक्कर में 35 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रेगिस्तानी राजमार्ग पर एक नागरिक बस और गृह मंत्रालय की बस के बीच हुई टक्कर में लगभग 30 लोग घायल हुए। सेना के हेलीकॉप्टर घटनास्थल पर बचाव अभियान में लगे हुए हैं। घटना के कारणों की जांच जारी है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका की ओर से आज रात भर तीव्र सैन्य कार्रवाई नहीं की गई है। ये लगातार 13 रातों से जारी अमेरिकी हमलों में विराम का संकेत है। हालांकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास तनाव बढ़ने के बाद क्षेत्रीय अस्थिरता अब भी गंभीर बनी हुई है। ईरानी स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता हुसैन करमानपुर ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से सैन्य कार्रवाई में विराम की पुष्टि करते हुए कहा कि ईरान में शांतिपूर्ण रात गुजरी। इस बीच अमरीकी केंद्रीय कमान ने तत्काल परिचालन विराम की घोषणा नहीं की, जिससे पिछले 13 दिनों से चल रही उसकी नियमित आक्रामक कार्रवाई की घोषणा का क्रम टूट गया। इस बीच ईरानी क्षेत्र में रात भर शांति रहने के बावजूद पड़ोसी खाड़ी देशों में सुरक्षा संबंधी चेतावनी जारी रही। सऊदी अरब के अधिकारियों ने लाल सागर के यानबू और जिजान प्रांतों में चेतावनी सायरन सक्रिय कर दिए, जो तेल अवसंरचना के लिए महत्वपूर्ण केंद्र हैं। ईरान ने कथित मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों के मुद्दे पर उसके अधिकारियों पर यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए नवीनतम प्रतिबंधों की आलोचना की। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बखाई ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ये टिप्पणी की। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। तूफान नोल दक्षिणी चीन और हांगकांग में तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश के साथ दस्तक दे रहा है। इसके चलते पूरा क्षेत्र हाई अलर्ट पर है और दर्जनों उड़ानें रद्द कर दी गईं। हांगकांग मौसम कार्यालय के अनुसार नोल 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ दक्षिणी चीन सागर के आगे बढ़ रहा है और पूर्वी ग्वांगडोंग के तट के करीब पहुंच रहा है। मानवाधिकार समूह बलूच वुमेन फोरम ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में जबरन गुमशुदगी की घटनाएं चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई है। फोरम ने बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना द्वारा कथित तौर पर की जा रही महिलाओं और बच्चों सहित नागरिकों की बढ़ती जबरन गुमशुदगी पर गहरी चिंता व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
मानवाधिकार समूह ने चेतावनी दी है कि ये प्रथा 21वीं सदी के सबसे चिंताजनक मानवाधिकार मुद्दों में से एक बन गई है। ये टिप्पणी 21 जुलाई को बलूचिस्तान के मस्तुंग जिले के किल्ली कोंगर इलाके में हुई घटना के बाद आई है, जहां सुरक्षा बलों के जवानों ने एक मकान पर छापा मारा और परिवार के 6 सदस्यों का अपहरण कर लिया। फोरम ने प्रांत भर में जबरन गुमशुदगी की बढ़ती घटनाओं की निंदा करते हुए कहा कि कई परिवार वर्षों से अपने प्रियजनों की वापसी का इंतजार कर रहे हैं और कई पीड़ित अपने प्रियजनों की प्रतीक्षा करते करते जान गंवा चुके हैं। फोरम ने इस बात पर जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय कानून स्पष्ट रूप से महिलाओं और बच्चों को विशेष सुरक्षा के योग्य वर्ग के रूप में मान्यता देता है। विश्व दर्पण के लिए विशाल शर्मा।
यमन के हुती विद्रोहियों ने आज कहा कि उसने दक्षिण पश्चिम सऊदी अरब के जिजान में औद्योगिक सुविधाएं पर मिसाइल हमले किए हैं। समूह का कहना है कि कार्रवाई सऊदी अरब द्वारा यमन के बंदरगाह शहर अल हुदैदा पर किए गए हमलों के जवाब में की गई थी। प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया। श्री शेखावत ने कहा कि सारनाथ शांति, ज्ञान और करुणा का शाश्वत प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये मानवता के लिए भारतीय सभ्यता के गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक योगदान को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सारनाथ शांति, ज्ञान और करुणा का एक चिरस्थायी प्रेरक है, जो भारत की शाश्वत आध्यात्मिक और दार्शनिक विरासत का प्रतीक है। ओडिशा के पवित्र नगर पुरी में ग्रैंड रोड पर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा देश विदेश से आए श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
पुरी में ग्रैंड रोड पर अपने शानदार रथों पर विराजमान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा आज पवित्र सुना वेश, स्वर्ण वेश में बेहद भव्य लग रहे हैं। उन्होंने बेहद खूबसूरती से बने मुकुट, हार, बाजूबंद, झुमके और अन्य पारंपरिक आभूषण पहने हैं। सालाना रथ यात्रा की सबसे भव्य रस्मों में से एक इस पवित्र स्वर्ण वेश के दर्शन के लिए आम लोगों को आधी रात तक का समय मिलने का उम्मीद है, जिससे लाखों भक्त इन तीनों पवित्र देव रूपियों की दिव्य भव्यता के दर्शन कर सकेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया है। जीत के लिए 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18वें ओवर में 129 रन पर सिमट गई। ईशान किशन ने शानदार 81 रन की पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत 2-0 से आगे है। अनहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्कॉश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में उनका सामना आज रात मिस्र की रुकैया सलेम से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा संपन्न कर स्वदेश रवाना। सीरिया में दो बसों की टक्कर में 35 लोगों की मौत। ईरान ने लगातार 13 रात अमरीकी हमलों के बाद सैन्य कार्रवाई में विराम की घोषणा की। दक्षिणी चीन में तूफान नोल का अलर्ट जारी। हांगकांग ने दर्जनों उड़ानें रद्द की। उत्तर प्रदेश में सारनाथ स्थित प्राचीन बौद्ध स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में खेले गए दूसरे 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रनों से हराया। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत ने 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।